आमतौर पर जब हम सब अधिकार या पावर के बारे में सोचते हैं ना, तो हमारे दिमाग में एक बहुत ही क्लियर तस्वीर बनती है।
हाँ, जैसे कोई भारी भरकम वर्दी या बैज।
बिल्कुल, या शायद किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ का आलीशान कॉर्नर वाला ऑफिस, मतलब कुछ ऐसा जो तुरंत दिखाई दे, जो दूर से ही बता दे कि भाई इस इंसान के पास कितनी ताकत है।
और एक्चुअली ये बहुत स्वाभाविक भी है। देखा जाए तो इतिहास गवाह है कि इंसान सत्ता को ना देखना और मेजर करना पसंद करता है, क्योंकि हमें विजिबल अधिकार से एक तरह की साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी मिलती है। जब चीजें सामने और स्पष्ट होती हैं तो समाज को समझना आसान हो जाता है।
सही बात है, लेकिन तब क्या हो जब सत्ता और अधिकार का वो सारा दिखावा, वो सारा शो ऑफ अचानक गायब हो जाए?
ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है।
हाँ, तो आज की इस गहन चर्चा में हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत है,
जी
डॉक्टर क्रेग कीनर का मैथ्यू अध्याय 10 और 11 पर दिया गया एक काफी विस्तृत ऐतिहासिक व्याख्यान।
जी
और आज का हमारा मिशन सिर्फ किसी पुराने धार्मिक पाठ के पन्ने पलटना नहीं है, बल्कि उस समय की साइकोलॉजी को डीकोड करना है।
एग्जैक्टली, हमें उस माइंडसेट को समझना है।
हाँ, हमें ये समझना है कि प्राचीन काल में जब किसी को कोई बेहद मुश्किल मिशन सौंपा जाता था, तो उस अधिकार भेड़ियों जैसी दुनिया में रेजिलियंस और उस अटूट विश्वास का असल में मतलब क्या होता था।
और ये भी कि ये इतिहास की बातें आज के इस डिजिटल और दिखावे से भरे युग में सच्ची समझ हासिल करने के लिए कैसे एक ब्लूप्रिंट बन सकती हैं।
ठीक है, आइए इसको थोड़ा खोलकर देखते हैं। डॉक्टर कीनर अपने एनालिसिस की शुरुआत ना एक बहुत ही बेसिक सामाजिक समस्या से करते हैं। जीसस उस समय भीड़ को देखकर फील करते हैं कि लोग बिला चरवाहे की भेड़ों की तरह हो गए हैं।
हाँ, और उन्हें उस मिशन के लिए और लोगों की जरूरत पड़ती है। यहाँ जो बात सबसे रोचक है वो ये है कि ये बिना चरवाहे की भीड़ों वाली लाइन सिर्फ एक कविता जैसी लाइन नहीं है।
अच्छा, इसका कोई और रेफरेंस है?
बिल्कुल, इसके पीछे एक गहरा ऐतिहासिक और पॉलिटिकल रेफरेंस है। पुराने नियम या ओल्ड टेस्टामेंट के इजीकियल 34 में एक बहुत ही कड़े शब्दों वाला संदेश है।
ओल्ड टेस्टामेंट में, राइट?
हाँ, वहां इसराइल के उस वक्त के नेताओं और राजाओं को खराब चरवाहों के रूप में बुरा भला कहा गया है। वो नेता खुद तो मोटे हो रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी जनता को अपनी भेड़ों को बिखरा हुआ और असुरक्षित छोड़ दिया था।
ओह, तो मतलब जीसस डायरेक्टली उस पॉलिटिकल फेलियर को पॉइंट आउट कर रहे थे।
और देखिए, एक इंसान के रूप में उनकी फिजिकल और ज्योग्राफिकल लिमिट थी। वो गैलिली के हर गांव हर नुक्कड़ पर एक ही टाइम पे तो नहीं हो सकते थे ना।
सही बात है, एक इंसान हर जगह नहीं जा सकता।
तो इस बड़े गैप को भरने के लिए उन्हें सिर्फ मददगार नहीं चाहिए थे, बल्कि उन्हें अपने उस पूरे मिशन को मल्टीप्लाई करना था।
और मुझे लगता है यहीं से उन 12 शिष्यों को प्रेरित, या ग्रीक में जैसे अपोस्टल्स कहते हैं, उस रूप में चुनने और भेजने की स्ट्रैटेजी आती है।
हाँ,
लेकिन यहाँ एक बात जो मुझे बहुत हैरान करने वाली लगी, वो ये कि ये लोग सिर्फ चिट्ठियां पहुंचाने वाले कोई आम डाकिये नहीं थे। इनके पास जो अधिकार था, उसकी लीगल वैल्यू बहुत बड़ी थी।
यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है प्राचीन यहूदी संस्कृति में, जिसको शोलियाच कहते थे।
शोलियाच?
हाँ, शोलियाख। राब साहित्य में ये बड़ा क्लियर लिखा है कि एक शोलियाख वो दूत होता है जिसे भेजने वाले का 100% लीगल और मॉरल अधिकार मिलता है।
वेट, 100%?
जी हाँ, जिस स्पेसिफिक काम के लिए उसे भेजा गया है, उस दायरे में उस दूत के शब्दों और कामों को बिल्कुल वैसा ही माना जाता था जैसे खुद उसे भेजने वाले के हों।
अगर मैं इसको आज के कॉर्पोरेट दुनिया से जोड़कर देखूं, तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ अपने किसी टॉप एग्जीक्यूटिव को पूरी पावर ऑफ अटर्नी दे दे, है ना?
बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया आपने।
मतलब वो एग्जीक्यूटिव किसी भी पेपर पे साइन करेगा तो वो लीगली सीईओ का ही साइन माना जाएगा।
ये तो ये एक अनबिलीवेबल लेवल का ट्रस्ट है। लेकिन यहाँ एक सवाल जो इस चर्चा को सुनने वालों के दिमाग में जरूर आएगा, वो इन कहानियों की हिस्टोरिकल ऑथेंटिसिटी को लेकर है।
हाँ, लोग डाउट करते हैं, राइट? लोग सोचते हैं कि ये चीजें शायद सदियों बाद किसी और देश में बैठकर लिख दी गई होंगी।
उस डाउट को क्लियर करने के लिए डॉक्टर कीनर बहुत सॉलिड हिस्टोरिकल प्रूफ्स देते हैं। सबसे पहले तो ये 12 की संख्या कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये सीधे तौर पर इसराइल की 12 प्राचीन जनजातियों को रिप्रेजेंट करती है।
जो कि एक नए आगाज का, एक नए रीस्टार्ट का सिंबल था।
और अगर हम नामों की बात करें, जैसे साइमन, जेम्स या जूडस, तो ये कोई रैंडम बनाए हुए नाम नहीं है। ये पहली सदी के जुडिया और गैलिली के इलाकों में सबसे कॉमन नाम थे।
अच्छा, जैसे जूडस इस्कैरियोट्स के नाम में एक ज्योग्राफिकल हिंट भी है ना?
हाँ, जूडस इस्कैरियोट का मतलब मोस्टली केरियोथ का आदमी माना जाता है, और केरियोथ जुडिया का एक एक्चुअल रियल सिटी था।
ओ वाओ।
और इन टेक्स्ट में मैरी नाम का बार बार आना, अगर ये कहानियां 100 साल बाद रोम या एथेंस में बैठकर कोई लिख रहा होता तो वो वहां के लोकल ग्रीक नाम यूज करता। लेकिन ये ज्योग्राफिकल और कल्चरल डिटेल्स प्रूफ हैं कि ये ग्राउंड रियलिटी से जुड़ी बातें।
सही कहा।
और शुरुआत में ये मिशन सिर्फ गैलीली तक, यानी इसराइल के घराने तक लिमिटेड रखा गया था, जो क्लियरली दिखाता है कि एक बहुत ही कैलकुलेटेड फेज वाइज स्ट्रैटेजी थी।
कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी तक तो बात समझ में आती है मुझे, लेकिन अब यहां से ना ये हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट इंसानी साइकोलॉजी के सारे रूल तोड़ना शुरू कर देता है।
वो कैसे?
मेरा मतलब है, अगर मेरे पास CEO वाली पावर ऑफ अटॉर्नी है तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगी? कि मैं फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करूं, 5-स्टार होटल में रुकूं, मेरी सिक्योरिटी हो?
स्वाभाविक है।
लेकिन इन दूतों को जो इंस्ट्रक्शंस मिले वो एग्जैक्टली ऑपोजिट थे। उन्हें कहा गया कि वो अपने साथ कोई एक्स्ट्रा कपड़े ना ले जाएं, पैसे ना रखें, और यहां तक कि सफर के लिए कोई लाठी यानी स्टाफ भी ना ले जाएं।
ये उस वक्त की दुनिया में एक सच में बहुत ही रेडिकल कदम था। हम एंशिएंट टाइम्स की बात कर रहे हैं।
हाँ, जहां ट्रैवल करना बहुत डेंजरस होता था।
बिल्कुल, रास्ते खराब थे और वाइल्ड एनिमल्स या लुटेरों का खतरा हमेशा रहता था। एक लाठी सिर्फ चलने का सपोर्ट नहीं थी, वो सेल्फ डिफेंस का सबसे बेसिक हथियार थी।
तो लाठी तक छोड़ देने का मतलब था कि उन्हें फिजिकली बिल्कुल डिफेंसलेस किया जा रहा था।
सही कहा। अगर हम इसकी तुलना उस समय के एसींस नाम के एक और यहूदी कम्युनिटी से करें, तो एसींस भी ट्रैवल करते वक्त सामान नहीं ले जाते थे, पर उनका एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क था। वो जहां जाते वहां उनके लोग थे।
उनके पास एक सेफ्टी नेट था, राइट?
हाँ, या फिर प्राचीन प्रॉफिट्स जैसे इलाइजा और इलाइशा को देख लीजिए, वो भी कंप्लीटली ईश्वर पर निर्भर थे। पर यहाँ इन 12 लोगों को पूरी तरह अनजान लोगों की हॉस्पिटैलिटी पर छोड़ दिया गया था।
और ये सिर्फ एक एंशिएंट थॉट एक्सपेरिमेंट नहीं है। इस डीप डाइव में मैंने देखा कि डॉक्टर कीनर मॉडर्न हिस्ट्री से जॉर्ज म्यूलर और हडसन टेलर का एग्जाम्पल देते हैं।
हाँ, 19th सेंचुरी के वो मिशनरीज।
राइट। इन लोगों ने सेम प्रिंसिपल को फॉलो किया, बड़े बड़े अनाथालय और मिशन चलाए, पर कभी किसी से चंदा नहीं मांगा।
उनका विश्वास था कि अगर मिशन सही है तो मदद अपने आप आएगी।
एग्जैक्टली। पर मुझे इस सब में जो सबसे ज्यादा रिलेटेबल और कमाल की चीज लगी वो डॉक्टर कीनर की खुद की पर्सनल स्टोरीज हैं। मतलब ये सिर्फ किताबी बातें नहीं थी उनके।
हाँ, वो दो किस्से इस पूरी फिलॉसफी को एक ह्यूमन फेस देते हैं।
हाँ, पहले किस्से में वो बताते हैं कि एक टाइम उनके बैंक अकाउंट में सिर्फ $1 बचा था। अब सोचिए, $1 में क्या ही होता है?
कुछ भी नहीं।
पर उन्होंने कलकत्ता के एक गरीब बच्चे के खाने और पढ़ाई के लिए हर महीने $15 देने का प्रॉमिस किया हुआ था। वो बहुत टेंशन में थे कि अब ये कैसे होगा।
और फिर चमत्कार होता है।
बिल्कुल। उसी रात अचानक एक अनजान आदमी उनके दरवाजे पर आता है और उन्हें $25 देकर चला जाता है, और अगली सुबह वो उन पैसों से इंडिया के उस बच्चे को $15 भेज देते हैं।
ये तो सच में हैरान करने वाला है।
और दूसरी स्टोरी तो और भी क्रेजी है। अपनी PhD के बाद वो अनएम्प्लॉयड थे और उन्हें अपने हजारों रिसर्च इंडेक्स कार्ड्स रखने के लिए एक अपार्टमेंट चाहिए था, जिसके लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट उन्हें भरना था।
हाँ, और उन्होंने बस प्रे किया और वेट किया।
हाँ, और 24 घंटे के अंदर उन्हें इंटरवर्सिटी प्रेस यानी IVP से एक बुक कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। और गूजबम्स वाली बात यह है कि वो एडवांस अमाउंट $1 मैच करता था उस रेंट से जो उन्हें चाहिए था।
देखिए, अगर हम इसको ब्रॉडर पिक्चर में कनेक्ट करें ना, तो डॉक्टर केनर यहाँ गरीबी को ग्लोरिफाई नहीं कर रहे हैं।
राइट, वो ये नहीं कह रहे कि पैसे ना होना अच्छी बात है।
बिल्कुल नहीं। इसके पीछे का मेन मैसेज बहुत प्रैक्टिकल है। अगर किसी इंसान के पास किसी खास काम के लिए एक सच्ची कॉलिंग है, एक बुलावा है, तो उसकी बेसिक जरूरतें पूरी हो जाएंगी।
मतलब जब आप उस लेवल के मिशन पर हैं, तो आपको एक हायर पावर पर ट्रस्ट करना ही पड़ता है।
हाँ, क्योंकि आपके बैंक बैलेंस या प्लानिंग से वो काम नहीं हो सकता।
ओके, तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? मेरा मतलब है, खाने या रेंट के लिए ट्रस्ट करना एक अलग चीज है, पर ये लेक्चर इसके बाद जो बोलता है वो बहुत ही डिस्टर्बिंग है। जीसस अपने मैसेजर्स से कहते हैं कि वो उन्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेज रहे हैं। अब लॉजिकली सोचिए, अगर मैं कोई बड़ी कंपनी लॉन्च कर रही हूँ तो मैं अपने टॉप 12 एग्जीक्यूटिव्स को जानबूझकर किसी मीट ग्राइंडर में थोड़ी ना फेंकूंगी।
सही पॉइंट है।
उन्हें पूरी तरह से डिफेंसलेस बनाकर भेड़ियों के आगे डालने में आखिर क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है?
ये डाउट आना बहुत स्वाभाविक है और इनिशियली ये एक सुसाइडल प्लान ही लगता है, लेकिन इसको ढंग से समझने के लिए हमें उस समय की जस्टिस सिस्टम को देखना होगा। ये भेड़ियों का जिक्र कोई मुहावरा नहीं था,
ये लिटरल था।
हाँ, ये एक लिटरल वार्निंग थी कि उन्हें फिजिकल टॉर्चर झेलना पड़ेगा। उस वक्त लोकल अदालतें सिनेगॉग्स या सभाओं में लगती थी और सजा देने का तरीका बहुत ब्रूटल था।
बछाड़े के चमड़े के पत्ते से कोड़े मारना है ना?
एग्जैक्टली। रोमन और ज्यूइश लॉ के हिसाब से मैक्सिमम सजा 40 कोड़े होती थी, लेकिन भूल से भी 40 क्रॉस ना हो जाए इसलिए 39 कोड़े मारे जाते थे। और इसका प्रॉपर कैलकुलेशन था, 26 कोड़े पीठ पर और 13 छाती पर।
बाप रे, ये तो इंसान को मार ही डाले।
हाँ, लोग मर जाते थे। प्रेरित पॉल ने अपनी लाइफ में सजा को एक दो बार नहीं, पूरी 5 बार झेला था। और बात सिर्फ अदालत की नहीं थी, माइका 7-6 का हवाला देकर ये भी प्रिडिक्शन की गई थी कि परिवार तक टूट जाएंगे।
ओ, यानी अपने ही पेरेंट्स या बच्चों के खिलाफ खड़े हो जाएंगे।
बिल्कुल, सबसे सेफ जगह जो होती है वहाँ भी बिट्रेयल्स होंगे।
ये तो मतलब अनबिलीवेबल लेवल का मेंटल और फिजिकल पेन है। तो फिर लोग पागल क्यों नहीं हुए? जब ना पैसा है, ना डिफेंस है और फैमिली भी अगेंस्ट है, तो हिम्मत कहाँ से आ रही थी?
यहाँ पर ग्रीक फिलॉसफी और इस डॉक्यूमेंट के अप्रोच का एक बहुत बड़ा क्लैश दिखता है। उस वक्त ग्रीक थॉट में कैप्रिशियस फेट या अंधे भाग्य का कॉन्सेप्ट बहुत पॉपुलर था,
जहाँ भगवान इंसान के साथ बस खेल खेलते हैं।
सही कहा, इंसान हेल्पलेस था। लेकिन इसके ऑपोजिट डॉक्टर कीनर यहाँ ईश्वर की सॉवरेनिटी यानी सुप्रीम पावर का एक बड़ा ही प्यारा एग्जाम्पल देते हैं, गौरैया या स्पैरो का एग्जाम्पल।
हाँ, उस वक्त बाजार में चिड़िया की कीमत वाली बात।
जी, उस टाइम 2 गौरैया 1 सेंट या एसारियन में बिकते थे। 1 सेंट 1 डिनारियस का यानी 1 दिन की मजदूरी का 16वां हिस्सा होता था,
मतलब 1 घंटे की सैलरी से भी सस्ती।
एग्जैक्टली, वो सबसे सस्ती चीज थी बाजार में। पर फिर भी कहा गया कि उस सुप्रीम पावर की मर्जी के बिना एक छोटी सी गौरैया भी जमीन पर नहीं गिर सकती, और तुम्हारे तो सर के बाल भी गिने हुए हैं।
ओ, तो बेसिकली मैसेज ये था कि यूनिवर्स के हर पार्टिकल पर कंट्रोल है।
हाँ, तो अगर बाहर भेड़िए भी हैं तो भी वो सुप्रीम पावर तुम्हारे साथ है।
और मुझे लगता है शायद इसी कॉन्टेक्स्ट में क्रॉस उठाने या कैरिंग द क्रॉस की बात आती है। आजकल तो हमने इसको एक बड़ा कैजुअल सा मुहावरा बना दिया है।
हाँ, लोग आम जिंदगी में बोलते हैं।
राइट, कोई कहेगा मेरी तो जॉब ही इतनी बोरिंग है, यही मेरा क्रॉस है, या मैं ट्रैफिक में फंस गई, दैट्स माई क्रॉस टू बेयर। लेकिन उस फर्स्ट सेंचुरी की जुडिया में क्रॉस उठाने का एक्चुअल मतलब क्या था?
उसका एक्चुअल हिस्टोरिकल मीनिंग इन मॉडर्न मुहावरों से बहुत अलग और खौफनाक था। क्रॉस उठाने का सीधा मतलब था कि इंसान को मौत की सजा मिल चुकी है।
वो एग्जीक्यूशन का पार्ट था।
हाँ, इंसान को नंगा किया जाता था, बुरी तरह कोड़े मारे जाते थे, और फिर उसे अपने ही मौत के औजार को उस भारी लकड़ी के तख्ते को खुद ढोकर ले जाना पड़ता था,
और वो भी एक ऐसी भीड़ के बीच से जो आप पर थूक रही हो, गालियां दे रही हो।
बिल्कुल, रोमन एम्पायर में वो अपमान और दर्द का पीक था। जीसस बस ये क्लियर कर रहे थे कि इस रास्ते पर चलने का मतलब अपनी ईगो और अपनी जान की परवाह को परमानेंटली खत्म करना होगा।
ये तो बहुत हैवी है। बाहर के दुश्मनों से लड़ना, ये फिर भी थोड़ा समझ आता है जब आपको अपने मिशन पर भरोसा हो, पर तब क्या हो जब आपका अपना ही ट्रस्ट टूटने लगे?
ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है।
हाँ, और इसी चर्चा में आगे चलकर जॉन द बैप्टिस्ट का मेंशन आता है, जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। जॉन उस वक्त मैचरस की जेल में बंद थे,
जो राजा हेरोड का एक बहुत ही डरावना और आइसोलेटेड किला था।
एग्जैक्टली, और जॉन जिन्होंने जीसस को दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस किया था, वही जॉन उस जेल में अचानक डाउट में पड़ गए।
और उनका डाउट कम्प्लीटली नेचुरल था। अगर हम और आप उस जेल में होते, हम भी वही सोचते। जॉन ने डिक्लेयर किया था कि मसीहा आएगा और आग और इंसाफ लाएगा।
उन्हें लगा था कि रोमन एम्पायर अभी खत्म हो जाएगा और बुराई मिट जाएगी।
पर जेल में उन्हें सुनने को क्या मिल रहा था? कि जीसस तो बीमारों को ठीक कर रहे हैं, शांति की बातें कर रहे हैं।
तो उनकी खुद की बनाई हुई मसीहा की वो एग्रेसिव तस्वीर, वो एक्सपेक्टेशन टूट रही थी।
हाँ, उन्हें वो आग और जजमेंट कहीं दिखाई नहीं।
और तब जीसस ने उन्हें जो आंसर दिया ना,
हाँ,
उसने सारे फ्रेम को ही बदल दिया। उन्होंने डायरेक्ट आर्ग्यूमेंट नहीं किया, बल्कि आइजाया के चैप्टर 35 और 61 का हवाला दिया।
उन्होंने कहा, जाकर बताओ कि अंधे देख रहे हैं और कोढ़ी ठीक हो रहे हैं।
हाँ, और इसी कॉन्टेक्स्ट में डॉक्टर कीनर के लेक्चर में एक मॉडर्न स्टोरी आती है, बारी माल्टो की। वो एक ओझा था, यानी एक शामान,
जिसे कोड यानी लेप्रसी हो गई थी।
राइट, और उसके अपने गांव वालों ने उसे जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया था। पर एक रात फरिश्तों ने उसे सपने में छुआ और अगली सुबह उसका कोड बिल्कुल गायब,
और उसे एक चमत्कार ने पूरे गांव का माइंडसेट बदल दिया था।
वही तो, जीसस जॉन को यही समझा रहे थे कि जो चीज तुम चाहते थे वो आ चुकी है, पर उस इसका तरीका तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस जैसा वायोलेंस वाला नहीं है।
यहाँ जो रियल कॉन्फ्लिक्ट है वो एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी का है।
सही बात है, और उस वक्त की इस पूरी मेंटालिटी को समझाने के लिए जीसस ने एक एनालॉजी दी जो आज भी कम्प्लीटली रेलिवेंट है। उन्होंने उन लोगों को बाजार में बैठे बिगड़े हुए बच्चों यानी स्पॉइल्ड चिल्ड्रन की तरह बताया।
हाँ, वो बंसुरी वाला एग्जाम्पल।
राइट, वो बच्चे जो कहते हैं हमने बंसुरी बजाई पर तुम नाचे नहीं, हमने शोक गीत गाया पर तुम रोए नहीं। जब जॉन द बैप्टिस्ट ने उपवास किया और स्ट्रिक्ट लाइफ जी तो लोगों ने कहा इसमें भूत है।
और जब जीसस ने सबके साथ खाया पिया तो क्या कहा?
उन्होंने ड्यूटरोनमी 21 का गलत रेफरेंस देकर उन्हें पेटू और पियक्कड़ बोल दिया। और आज अगर हम देखें, हम भी तो यही करते हैं।
कैसे?
हम सोशल मीडिया पर अपना एक फ्रेम बना लेते हैं कि सच्चाई ऐसी ही दिखनी चाहिए, और जब रियलिटी मैच नहीं करती तो हम कैंसल कल्चर में लग जाते हैं। हम रियलिटी को ही रिजेक्ट कर देते हैं।
ये बड़ी कमाल की तुलना है, हम सच में उन बिगड़े हुए बच्चों जैसे बन जाते हैं। और यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है कि अगर समाज के वो एजुकेटेड रिलीजियस और समझदार लोग अपने ईगो के चक्कर में सच को नहीं देख पाए तो फिर असली समझ आखिर मिली किसे?
तो जीसस इस पर एक्सप्लिसिटली कहते हैं कि ये बातें ज्ञानियों से छुपाई गई और बच्चों यानी इन्फेंट्स को बताई गई।
और यहाँ बच्चे का मतलब फिजिकल एज नहीं है।
हाँ, मतलब वो लोग जो नया सीखने के लिए हम्बल रहते हैं, और जो लोग अहंकार में थे उनके लिए बड़ी सख्त वार्निंग थी, जैसे कैपरनम, बेथसाइदा और चोराजिन जैसे शहर
जहाँ सबसे ज्यादा चमत्कार हुए थे।
बिल्कुल, कैपरनम को तो सीधे आयजाया 14 वाले बेबीलोन के राजा से कंपेयर कर दिया गया। उस राजा ने अपनी ईगो में खुद को स्वर्ग तक उठाना चाहा था, पर उसे सीधा पाताल यानी हेडीज में गिरा दिया गया।
यहाँ डॉक्टर केनर एक बहुत अच्छा बैलेंस बनाते हैं, क्योंकि वो खुद एक प्रोफेसर हैं, तो वो ये क्लियर करते हैं कि एजुकेशन या ज्ञान होना अपने आप में गलत नहीं है।
राइट,
प्रॉब्लम तब आती है जब ज्ञान का मतलब सिर्फ आर्ग्यूमेंट जीतना, डिग्रीज इकट्ठा करना और खुद को सुपीरियर मानना बन जाए। असली समझना हमेशा विनम्रता यानी ह्यूमिलिटी में आती है, और यही इस अध्याय का सबसे खूबसूरत पार्ट आता है, योक ऑफ जीसस या यीशु का जुआ।
ये जुआ या योक वो लकड़ी का फ्रेम होता है ना, जो दो बैलों की गर्दन पर रखा जाता है ताकि वो खेत जोत सके।
बिल्कुल वही, उस जमाने के जो धार्मिक गुरु और फैरिसीज थे उन्होंने रूल्स और साबित के कानून को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया था कि वो आम आदमी के लिए एक बहुत भारी जुआ बन गया था।
वो बस धर्म को एक चेकलिस्ट की तरह यूज कर रहे थे।
सही कहा, ओल्ड टेस्टामेंट के जेरेमिया 6:16 में भी आत्मा के आराम की बात है। पर जीसस यहाँ कहते हैं कि उनका जुआ हल्का है।
हल्का क्यों?
क्योंकि वो ईश्वर के अधिकार और प्रेम से आता है, ना कि इंसानों के बनाए स्ट्रिक्ट रूल से। जब आप उस सुप्रीम पावर से जुड़ते हैं तो वो पावर आपके हिस्से का बोझ खुद ही उठा लेती है।
क्या बात है, अगर इसको हम आज के टाइम पे देखें तो आज हमारा भारी जुआ पता है क्या है? ये दिखाना कि हम कितने सक्सेसफुल हैं।
हाँ, सोसाइटी का प्रेशर।
राइट, लिंक्डइन पर अपने टाइटल्स चमकाना, हमेशा खुद को परफेक्ट दिखाना, ये जताना कि हमारे पास सबका कंट्रोल है, ये बहुत एग्जॉस्टिंग है।
बड़ी थका देने वाली रेस है।
तो असली समझ अपनी डिग्री पर घमंड करने में नहीं है। असली रेस्ट तब मिलता है जब हम मान लें कि हमारी लिमिट है और हम उस बड़ी पावर पर डिपेंड हो जाएं।
यही तो इन्फॉर्मेशन और ट्रू विजडम के बीच का डिफरेंस है। इन्फॉर्मेशन आपकी ईगो बढ़ाती है, पर ट्रू विजडम आपको हम्बल बनाती है और शांति देती है।
तो ये पूरी गहन चर्चा को अगर हम आज समेटें तो हमने बहुत सी लेयर्स देखी। हमने समझा कि एक सच्चा दूत होने का पावर किसी वर्दी या टाइटल से नहीं, बल्कि डायरेक्टली भेजने वाले के अथॉरिटी से आता है।
हमने उस सिंप्लिसिटी और डिपेंडेंस को भी देखा जहां लाठी और पैसों के बिना सफर किया गया।
हाँ, और भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह जाने का कॉन्सेप्ट डिकोड किया। कंप्लीटली असुरक्षित होना, पर उस पावर पर ट्रस्ट करना जिसके लिए एक गौरैया भी कीमती है।
और सबसे बड़ी बात, जब हमारी एक्सपेक्टेशंस टूटती हैं तो डाउट कैसे आता है, जैसे जॉन द बैप्टिस्ट को आया।
बिल्कुल, ईगो इंसान को एक भारी जूते के नीचे दबा देती है, पर ह्यूमिलिटी उसे वो सच्ची समझ और आत्मा की शांति देती है जो आज का कोई भी स्टेटस नहीं दे सकता। तो इस गहन चर्चा के अंत में हम सबके लिए, सुनने वालों के लिए, एक बड़ा ही गहरा सवाल है।
जी, जरूर सोचना चाहिए।
जैसे हमने स्टार्ट में डिस्कस किया कि हमें अथॉरिटी को फिजिकली देखने की आदत है, जरा सोचिए अगर आज हमारी लाइफ से सक्सेस, लग्जरी, बैंक बैलेंस और सारी डिजिटल आश्रय छीन ली जाएं, अगर हम बिल्कुल खाली हाथ रह जाएं, तो क्या हमारे अंदर इतनी ह्यूमिलिटी बचेगी कि हम उस असली सच्चाई और आत्मा के ट्रू रेस्ट को पहचान सकें, भले ही वो हमारे बिल्कुल सामने ही क्यों ना खड़ा हो।
ये एक ऐसी चर्चा है जो हमारे साथ लंबे समय तक रहेगी।
बिल्कुल। इस गहन अध्याय को सुनने वाले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। विचार करते रहिए और सीखते रहिए।